ஓம் த்யாயே நித்யம் மஹேசம் ரஜத கிரிநிபம் சாரு சந்திராவதன்சம் ரத்னாகல்போஜ்வலாங்கம் பரசுமிருகவரா பீதிஹஸ்தம் பிரசன்னம் பத்மாசீனம் சமந்தாத் ஸ்துதமமரகணிர் வ்யாக்ரக்ருத்திம் வசானம் விஸ்வாத்யம் விஸ்வவந்த்யம் நிகிலபயஹரம் பஞ்சவக்த்ரம் த்ரிநேத்ரம் நாராயணம் பத்மபவம் வசிஷ்டம் சக்திம் ச தத்புத்ர பராசரஞ்ச வ்யாஸம் சுகம் கௌடபதம் மஹந்தம் கோவிந்த யோகீந்திரமதாஸ்ய சிஷ்யம் ஸ்ரீசங்கராச்சார்ய மதாஸ்ய பத்ம பாதஞ்ச ஹஸ்தாமலகஞ்ச சிஷ்யம் தந்தோடகம் வார்த்திககாரமன்யான் அஸ்மத் குரும் சந்ததமானதோஸ்மி விசுத்த ஜான தேஹாய த்ரிவேதி திவ்ய சக்ஷுஷே ஸ்ரேய ப்ராப்தி நிமித்தாய நம சோமார்த்ததாரிணே ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. சிவாய நம ஓம் சிவாய நம ஓம் சிவாய நம ஓம் நம சிவாய சிவாய நம ஓம் சிவாய நம ஓம் சிவாய நம ஓம் நம சிவாய சிவாய நம ஓம் சிவாய நம ஓம் சிவாய நம ஓம் நம சிவாய சிவாய நம ஓம் சிவாய நம ஓம் நம சிவாய ஹராய நம ஓம் ஹராய நம ஓம் ஹராய நம ஓம் நமோ ஹராய ஹராய நம ஓம் ஹராய நம ஓம் நமோ ஹராய ஹராய நம ஓம் ஹராய நம ஓம் ஹராய நம ஓம் நமோ ஹராய ஹராய நம ஓம் ஹராய நம ஓம் நமோ ஹராய பாபாய நம ஓம் பாபாய நம ஓம் பாபாய நம ஓம் நமோ பாபாய பாபாய நம ஓம் பாபாய நம ஓம் நமோ பாபாய பாபாய நம ஓம் பாபாய நம ஓம் பாபாய நம ஓம் நமோ பாபாய 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 நம ஓம் பாபாய நம ஓம் நமோ பாபாய मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ नमो मृडाय मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ नमो मृडाय मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ नमो मृडाय 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 नमः ॐ नमो मृडाय शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय भज मन शिव शिव निरन्तरम् जप मन शिव शिव निरन्तरम् भज मन शिव शिव जप मन शिव शिव निरन्तरम् रट मन शिव शिव निरन्तरम् स्मर मन शिव शिव निरन्तरम् रट मन शिव शिव स्मर मन शिव शिव निरन्तरम् ॐ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम ओम ओम।
थोड़ा आवाज कम करो।
ओम 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 ओम। आदिगुरु भगवान शंकराचार्य विरचित।
ये स्पीकर को थोड़ा इधर घुमाओ, सीधे आवाज आ रहा है। थोड़ा उधर, थोड़ा बस बस।
आदिगुरु भगवान शंकराचार्य जी द्वारा विरचित शिव भक्ति से ओतप्रोत शिवानंद लहरी इस स्तोत्र के आधार पर सायंकालीन विशेष संत प्रवचन श्रृंखला का आज छठा दिन है। ये 10 दिवसीय कार्यक्रम है। अभ्यास के लिए आपके पास पर्चा छपा हुआ है। श्लोक नंबर 57वां 5-7। नित्यं सोदर पूरणाय सकला नुद्दिश्य वित्ताशया व्यर्थं पर्यटनं करोमि भवतः सेवां न जाने विभो मज्जन्मांतर पुण्य पाक बलतः स्वं सर्व सर्वांतरस् तिष्ठस्येव हि तेन वा पशुपते ते रक्षणीयोऽस्म्यहम् एको वारिजबान्धव चितिनभो व्याप्तं तमो मण्डलम् भीत्वा लोचन गोचरोऽपि भवति त्वं कोटिसूर्यप्रभः वेद्य किं न भवस्यहो घनतरम् कीदृग्भवेन्मत्तमा तत्सर्वं व्यपनीय मे पशुपते साक्षात् प्रसन्नो भव हंसः पद्मवनं समिच्छति यथा नीलाम्बुदं चातकः कोकः कोकनदप्रियं प्रतिदिनम् चन्द्रं चकोरस्तथा चेतो वाञ्छति मामकं पशुपते चिन्मार्गमृग्यं विभो गौरीनाथ भवत्पदाब्जयुगलम् कैवल्यसौख्यप्रदम् रोधस्तो यहृताश्रमेण पथिकस् छायां तरोर्वृष्टितो भीतः स्वस्तगृहं गृहस्थमतिथिर् दीनः प्रभुं धार्मिकम् दीपं सन्तमसा कुलश्च सिखिनम् सीतावृतस्त्वं तथा चेतः सर्वभयापहं व्रज सुखम् शम्भो पदाम्भोरुहम् अङ्कोलं निजबीजसन्ततिरजस् कान्तोपलं सूचिका साध्वी नैजबिभुं लता चितिरुहम् सिन्धुः सरिद्वल्लभम् प्राप्नोतीह यथा तथा पशुपते पादारविन्दद्वयम् चेतो वृत्तिरुपेत्यतिष्ठति सदा सा भक्तिरित्युच्यते नित्यं सोदरपूरणाय सकला नोद्दिश्य वित्ताशया व्यर्थं पर्यटनं करोमि भवतः ते सेवाम न जाने विभो मज्जन्मांतर पुण्य पाक बलतस तम सर्व सर्वांतर तिष्ठस्ये वहिते न वा पशुपते ते रक्षणीयोऽस्म्यहम्। हाँ, तो प्रसंग चल रहा है। भगवान शंकराचार्य जी महाराज, भगवान शिव के सामने अपनी दीनता का भाव व्यक्त करते हैं। एक तो दीनता का भाव व्यक्त करते हैं, दूसरा अपनी नासमझी यानी मूर्खता का भी भाव व्यक्त कर रहे हैं। नित्यम सोदर पूर्णाय सकलान उद्दिश्य वित्ताशया। मेरी अवस्था ऐसी है, भगवान ने जो पेट दी है, पापी पेट, जन्म दिया ये तो बहुत अच्छा किया, लेकिन इस जीवन के साथ एक जो पेट का भाग जोड़ दिया है, सारे मुसीबत का जड़ वही है और उसी के चलते मैं हैरान होता हूं। शंकराचार्य जी कहते हैं, सन्यासी होने पर भी पेट नहीं छूटता, बड़ी मुसीबत है भाई। सन्यासी होने के बाद घर छूट गया, मां छूट गई, बाप छूट गया, भाई छूट गए, बंधु छूट गए, इष्ट मित्र छूट गए, मेरा तेरा भाव छूट गया, कदाचित पहले संन्यास लेने से पहले वो गृहस्थ रहे होंगे तो पत्नी छूट गई, अखंडानंद जी महाराज की तरह, प्रेमपुरी जी महाराज की तरह, बच्चे छूट गए, गांव छूट गया, है ना, सब छूट गए कि नहीं, लेकिन एक पेट नहीं छूटा। सब छूट गया लेकिन पेट नहीं छूटा भाई, जहां जाओ वहीं पीछे पड़ा रहता है। मुझे लगता है सन्यास लेने के बाद ये पेट भी छूट जाता तो सभी सन्यास लेते। लेकिन छूटता नहीं, इसलिए कोई भी सन्यास नहीं लेता है, वो तैयार नहीं होते सन्यास लेना। शंकराचार्य जी कहते हैं, नित्यम स्व उदर पूर्णाय। उदर माने पेट। हमारी समस्या एक तो अपना ही पेट भरने की मुसीबत है, सन्यासी को तो इसीलिए शंकराचार्य जी कहते सो उदर पूर्णाय, क्योंकि मां का पेट भरने की चिंता नहीं है सन्यासी को है। सन्यासी को केवल अपना पेट भरना है, मां का पेट भरना नहीं है, बाप का भी पेट भरना नहीं है, बाप छूट गया, मां छूट गई, पत्नी का पेट भरना नहीं है, पति का पेट भरना नहीं है, वो छूट गए, बच्चों का पेट भरना नहीं है, वो भी छूट गए। क्या रह गया? स्व उदर, पर उदर नहीं, स्व उदर। आप लोगों को तो, आप लोगों को तो अपना तो पेट भरना है ही है, साथ ही सन्यासी आकर खड़ा हो गया तो उसका उदर कौन भर देगा? बोलो, आपको अपने पेट भरने की समस्या तो है ही है, साथ में सन्यासी आकर दरवाजे में खड़ा है तो उसका पेट भरने की भी जिम्मा किसकी है? बोलो, आपकी है। इसी तरह कोई ब्रह्मचारी आके खड़ा हो गया, उसका भी पेट भरने की जिम्मा आपकी है। शादी किया तो पत्नी का पेट भरने की जिम्मा किसकी है? पति की। और आजकल की पत्नी का पेट, पति का पेट भरने की जिम्मा पत्नी का, दोनों एक दूसरे के भरने में लगे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के पेट कभी भरता नहीं। लगे दोनों हैं, पहले अकेले भरता था, अब दो दो लगे हुए हैं, पेट का कुछ साइज बढ़ गया लगता है है ना? पहले की अपेक्षा आजकल पेट की साइज कुछ बढ़ गया लगता है। पहले अकेले पति कमाता था, सारे कुटुंब का पेट भरता था, तो सभी का पेट कुछ छोड़ा था, साइज होगा, इसीलिए हो गया काम। और अभी सभी कमाते हैं फिर भी नहीं भरता है, तो साइज बढ़ गया ऐसा लगता है। बुरा नहीं मानना, पहले केवल मारवाड़ी बाइयों का पेट बड़ा होता था उन लोग बड़े तगड़े तगड़े मोटे मोटे दिखते थे पहले, अब आज तक तो सभी पेट में बड़े बड़े दिखते हैं भाई, सभी का पेट लगा है, तोंदा लटका हुआ है, चाहे गुजराती हो, चाहे मारवाड़ी हो, चाहे महाराष्ट्रियन हो, चाहे यूपी का हो, इसलिए कुछ साइज बढ़ गया लगता है। नहीं, बड़ी समस्या है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि मुझे तो केवल एक पेट भरनी थी, तो एक पेट भरने के लिए भी मुझे इस पेट ने क्या किया? व्यर्थम पर्यटन अब करोमि, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, व्यर्थ घूम रहा हूं मैं, पर्यटनम करोमि। सन्यासी क्यों भटकता है भाई एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव? पर्यटनम सोदर पूर्णाय, अपने उस एक पेट भरने के लिए घूम रहा हूं। नित्यम, वो कोई एक दिन भरने से पूरा होने वाला नहीं है, इसलिए नित्यम सोदर पूर्णाय। एक बार भर देने के बाद फिर खाली ना होता तो सबसे आनंद आता, जैसे तैसे भर लेते, फिर उसको भरना न पड़ता। तो एक महात्मा कहते थे, भगवान ने ऐसा एक घड़ा बना दिया है, ऊपर से डालने के लिए मुख बना दिया और नीचे एक छेद बना दिया, तो खाली का खाली, सुबह भरो शाम खाली, शाम भरो सुबह खाली। ये घड़ा भी कैसा घड़ा बना दिया, वो छेद न बना दिया होता तो उसका क्या बिगड़ता? इसीलिए नित्यम हमेशा भरना पड़ रहा है। स्वउदर पूर्णाय सकलान उद्दिश्य वित्ताशया, केवल पेट भरना होता तब महाराज भर्तृहरि ने लिखा है, काकोपि जीवति बलिम च भुंगते, काकोपि जीवति चिराय बलिम च भुंगते। अपने पेट भरकर तो काग भी जीता है। लोग जो भोजन करते हैं उसमें से दो चार दाने जो गिरे हुए होते हैं उन्हीं को चूंग चांग कर कौवा भी अपना जीवन जीता है। कुत्ते भी जीते हैं कबल खाकर, लेकिन कौवे को न आश्रम बनाना है न मकान बनाना है। कुत्ते को न मकान बनाना है न आश्रम बनाना है, केवल पेट भरना है। इसलिए दौड़ता है, पेट भर लेता है, दिन भर सोता है, रात भर सोता है। महाराज, एक तो पेट भरने की समस्या है, दूसरी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा आश्रम बन गए। वो आश्रम को कैसे बनाओगे भाई? है? आश्रम बनाना है, आश्रम चलाना है, तब क्या हुआ? वित्ताशया है, वित्ताशया। तुम्हारे आत्मानंद स्वामी बंबई केवल तुमको वेदांत सुनाने आता है? तुम लोग क्या समझ रहे हो बोलो? स्वामी आत्मानंद गिरी काठमांडू से, नेपाल से केवल हमको वेदांत सुनाने आते हैं, यही समझ रहे हो? हैं? अरे भाई, वेदांत सुनाने के बाद थोड़ी बहुत दक्षिणा देना बंद करो तो नहीं आएगा आत्मानंद। सच्ची बात कह रहा हूं, आत्मानंद क्या, कोई भी आनंद नहीं आएगा। बोले महाराज आपको पैसा क्यों चाहिए? सुबह शाम दाल भात खाने की व्यवस्था हम मिला देते हैं। बोले तुम्हारी दाल भात तो हम वही हरिद्वार बैठ के भी खा लेंगे, वहां हजार अन्न छत्र खुले हुए हैं, कहीं भी खड़े होकर दाल भात खाकर पेट भर लेंगे। है? बोले हमको वेदांत तो सुनाने आओ ना। बोले तुमको वेदांत तो सुनाने के लिए तो वहीं आओ ना, तुमको सुनना हो तो वहीं आओ। नहीं महाराज, हमको फुर्सत नहीं है वहां आने का। बोले फुर्सत नहीं है तो मर, खाली वेदांत तो सुनाने के लिए क्यों आएंगे? बोले नहीं महाराज, वेदांत की बात नहीं, वेदांत तो भी सुना दीजिए, आश्रम चलाने के लिए थोड़ी बहुत दक्षिणा दिया करेंगे भाई। बोले तब तो आएंगे, तब तुमको समय निकालने की जरूरत नहीं, हम अपना समय निकालेंगे। संसार से इसी तरह चल रहा है, चल रहा है कि नहीं बोलो? मैं सच बोल रहा हूं। सभी को मुझे लगता है यहां आने वाले हर महात्मा के पीछे कम से कम भी एक मठ तो उसके साथ जुड़ा हुआ है, और थोड़ा बड़ा होगा तो जो महात्मा जितना बड़ा उसके मठ उतने ही बड़े है, जो महात्मा जितना प्रसिद्ध उसके मठ उतने ही व्यापक। लेव जी, अब वो सबको चलाना है कि नहीं बोलो? उधर का आश्रम वाला कोठारी कहता है, महाराज पैसा खत्म हो गया, राशन खत्म हो गया। उधर का आश्रम वाला कहता है, महाराज पैसा खत्म हो गया, राशन खत्म हो गया। अच्छा भाई, हम बंबई कथा करने जा रहे हैं, वहां से जब लौट के आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, चिंता न करो। ले जी, शंकराचार्य जी स्पष्ट कह रहे हैं, वो ये मैं नहीं कह रहा हूं, कह रहे हैं। उनके साथ भी हजार शिष्य पीछे पीछे चलते थे, तो समस्या तो उनके साथ भी थी, मंडली चलती थी। నిత్యం సోదర పూరణాయ సకలాన్ ఉద్దిశ్య విత్తాశయా. కొంచెం మిలేగా సంపత్తి మిలేగి, ధన సంపత్తి మిలేగా, ఖానేకు మిలేగా. వ్యర్థం పర్యటనం కరోమి భవత, ఏ విశ్వాస్ నా సన్యాసి కో హై నా గిరస్థో కో హై. ఔర్ ఇసిలే వో వ్యర్థం పర్యటనం కరోమి, భటక్ రహా హూ. మహారాజ భర్తృహరి నే ఏక్ కుత్తే కో లక్ష్య కర్కే కహా, ఏ కుత్తా తో సుబహ సే శామ్ తక్ దౌడతా రహతా హై, శాంతి సే బైఠతా నహీ హై. క్యా దౌడనే మాత్ర సే లక్ష్మి మిల్తీ హై? మాధావ మాధావ వినయవ ధావన్, తుమ్హారే దౌడనే మాత్ర సే లక్ష్మి నహీ మిల్తీ. యది దౌడనే మాత్ర సే లక్ష్మి మిల్తీ తో కుత్తా సబ్సే జ్యాదా ధనీ హోతా. లక్ష్య కియా ఏ సంసార్ కే మనుష్య హో, తుమ్ రాత్ దిన్ దౌడ్ రహే హో, క్యూ దౌడ్ రహే హో? లక్ష్మీ కే లియే దౌడ్ రహే హో, లక్ష్మీ మిలేగీ ఇస్కే లియే దౌడ్ రహే హో. ఔర్ దౌడనే మాత్ర సే లక్ష్మీ మిల్తీ తో సబ్సే జ్యాదా లక్ష్మీ కిస్కే పాస్ హోతీ ఆజ్? కుత్తే కే పాస్ హోతీ, అమెరికా కే కుత్తే కే పాస్ తో హోతీ హో, ఇండియా కే కుత్తో కే పాస్ నహీ. వహాం కా నియమ్ క్యా హై పతా హై? అప్నీ ప్రాపర్టీ అప్నే బచ్చో కో బిల్ నహీ కర్తే. కహతే బచ్చే తో కమా లెంగే ఖా లెంగే, ఫిర్ అప్నీ ప్రాపర్టీ కిస్కో బిల్ కర్తే హై మర్నే సే పహలే? ఘర్ మే పాలే హుయే కుత్తే, మే మర్ జాఊంగా తో ఏ కుత్తా కమా కే ఖా తో సక్తా నహీ హై, ఇస్లియే ఇన్కో కౌన్ పాలేగా ఫిర్? తో మే అప్నీ ప్రాపర్టీ ఇస్కే నామ్ కర్ దేతా హూ, జబ్ తక్ యే బచేగా యే ప్రాపర్టీ సే ఇస్కా గుజారా చలేగా. కుత్తే కే నామ్ పర్ బిల్ కర్ దియా ఔర్ మర్ గయే లేవ్ జీ. ఔర్ వో కుత్తే దౌడతే నహీ హై, ఘర్ మే బైఠే రహతే హై, ఔర్ బిల్ మిల్ గయా, పైసా మిల్ గయా ఉన్కో. ఔర్ హమారే యహాన్ కే కుత్తే దౌడతే రహతే హై, కుచ్ నహీ మిల్తా హై బిచారా, టుకడా భీ నహీ మిల్తా హై. నిత్యం సోదర పూరణాయ సకలాట్ ఉద్దిశ్య విత్తాశయా వ్యర్థం పర్యటనం కరోమి. బినా మతలబ్ దౌడతా రహతా హూ మే, కభీ ఇధర్ కభీ ఉధర్, కభీ ఇధర్ కభీ ఉధర్. భవతః సేవాం న జానే వివో, ఆప్కీ కృపా హో జాయే తో కహీ దౌడనే కీ జరూరత హీ నహీ హై. యే మేరీ బుద్ధి మే ఆయీ నహీ, యే మేరీ మూర్ఖతా థీ, అప్నీ మూర్ఖతా సే మే దౌడ్ రహా హూ. జబకి ఆప్ ఏక్ మాత్ర ఆప్కీ కోయి సేవా కరే, ఉస్ ఆప్కే శరణ మే ఆప్కే ఆశ్రయ మే రహనే వాలే కో న ఉదర పూరణ కే లియే దౌడనా జరూరత హై, న విత్త కే లియే దౌడనే కీ జరూరత హై. ఆప్కీ కృపా హో జాయే తో సర్వస్వ ఉస్కో ప్రాప్త హో సక్తా హై. వరివసి తచ్చరణయోర్, ఆప్కీ చరణ కీ పూజా సేవా కర్నే వాలే బాణాసూర్ కో యద్రిద్ధిం సూత్రామ్రో పరమ ఉచ్చైరపి సతి. సూత్రామణ మనే ఇంద్రక్క సామ్రాజ్య, హలాకి సబ్సే ఉచ్చ సామ్రాజ్యత, లేకిన్ ఆప్కీ పూజా కర్నే వాలా బాణాసూర్ కో తో ఇంద్ర కే సామ్రాజ్య కో భీ తుచ్చ కర్నే వాలా సామ్రాజ్య ఆప్కీ కృపా సే ప్రాప్త హో గయి. అధశ్చక్రేమాణ, క్యోంకి ఇంద్ర కే జో సామ్రాజ్య వో కేవల స్వర్గ కీ సామ్రాజ్య హై, ఆప్కే కృపా సే జో సామ్రాజ్య బాణాసూర్ నే ప్రాప్త కీ वो तो तीनों लोक का साम्राज्य प्राप्त किए, पाताल का भी, मर्त्य लोक का भी, है ना। और आपकी कृपा से माणासुर ने तो स्वर्ग को भी जीता, मर्त्य लोक को भी जीता, पाताल को भी जीता। तो स्वर्ग का साम्राज्य तुच्छ हुआ कि नहीं, ये कैसे संभव हुआ? वरी वसी तरी तो चरण योर, बाणासुर ने और कहीं कहीं इधर उधर भटका नहीं बाणासुर, केवल आपके चरण का आश्रय लिया था, वो आपके चरण को छोड़कर कहीं गया नहीं। बाणासुर की शिव भक्ति तो आप लोगों ने सुना ही है। उसका नियम था, प्रतिदिन पार्थिवेश्वर का निर्माण करता था और पूजा करता था, विसर्जन करता था। उसने कहीं पुराण में पढ़ ली कि 125,000 शिवलिंग बनाकर पार्थिवेश्वर की पूजा करेगा तो उसको सारा साम्राज्य प्राप्त होगा। तो उसके मन में इच्छा हो गई कि वह सेवा भी मैं करूं, लेकिन हाथ तो दो है, कैसे करूं। फिर भी जैसे भी उसने अपना समय निकाल कर कुछ न कुछ पार्थिवेश्वर निर्माण करता था, प्रतिदिन मिट्टी लाता था, शिवलिंग निर्माण करता था। उस शिवलिंग में आवाहन से लेकर विसर्जन पर्यंत 16 उपचार पूजा करता था। फिर सायंकाल आरती करके नर्मदा में ले जाकर विसर्जन करता था। तो भगवान प्रसन्न हो गए, बोले बेटा तुम्हारी इस आराधना इस पूजा से मैं प्रसन्न हूं, तुम क्या चाहते हो वरदान मांगो। बोले महाराज अभी तो 125,000 शिवलिंग बनाता हूं, पूजा करता हूं इन दो हाथों से, मेरी इच्छा है करोड़ करोड़ शिवलिंग की अर्चना करूं, लेकिन ये दो हाथ कम हो गए, आप मुझे ज्यादा हाथ दोगे तो उन हाथों से मैं ज्यादा शिवलिंग बनाकर ज्यादा पूजा कर सकूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बोलो माणासुर ने, तो भगवान ने कहा कि जब मेरी ही पूजा करनी है तो तुझे हाथ देने में क्या कंजूसाई करनी है, तथास्तु कह देना है मुझे, है चेक काट कर तो देना था नहीं, तथास्तु। भगवान शिव ने तथास्तु कह दिया तो बाणासुर के 1,000 हाथ हो गए। अब तो बाणासुर बड़ा खुश हो गया, 1,000 हाथ से वो रोज 125,000 शिवलिंग का निर्माण करता था मिट्टी से रोज, और उसकी 16 उपचार पूजा करता था, और सायंकाल आरती करने के बाद विसर्जन करता था नर्मदा में ले जाकर। दूसरे दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता था, मिट्टी खोद कर लाता था, शिवलिंग बनाता था, और आवाहन से लेकर 16 उपचार पूजा करता था। तो शाम के समय में प्रदोष पूजा करने के बाद फिर नर्मदा में ले जाकर विसर्जन करता था। वाह क्या कहना भाई। और बाणासुर ने जिन शिवलिंगों का निर्माण करके नर्मदा में विसर्जन किया, आज भी वो नर्मदेश्वर बाणलिंग कहलाते हैं। सीधे नर्मदा से उठाकर पत्थर शिवलिंग लाओ, घर में पूजा करो, प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 16 उपचार पूजा करके प्राण प्रतिष्ठा बाणासुर ने कर चुका है। वही शिवलिंग आज भी मिलते हैं नर्मदा में, इसलिए बाणलिंग बोलते हैं उनको, शिवलिंग नर्मदा का शिवलिंग बाणलिंग की पूजा सबको करनी चाहिए। स्त्री शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंत्यज सबको करनी चाहिए, शास्त्र में इसका वर्णन है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रा चान्ने च संकराः, वर्ण संकर भी कर सकता है। मत भक्ति भावना पूता यान्ति मत परमं पदम्, म्लेच्छोपि या यदि मत भक्ति भक्ति समन्विताः तत् सम चतुर्वेदी नाग्निष्टोमादि कृत नर यस्तु पूजयते लिंगम माम जपत माम जगतपतिम यदि माम जगतपतिम ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्य शूद्रो वा मत्परायण तस्य प्रीत प्रसादस्याम सुभान लोकान अनुत्तमा। ये पूजा का बहुत महत्व है, शिव पूजन की बड़ी महिमा है। शिव गीता में, सूर्य पुराण में, विष्णु पुराण में शिव पूजन का बहुत महिमा है। वाणासुर ने पूजा की, उससे प्रसन्न होकर शिव साक्षात आ गए, प्रकट हो गए, कहा कि बेटा अब क्या इच्छा है बोलो। बोले महाराज मेरी अब इच्छा है आप मेरे घर में विराजमान हो, कैलाश छोड़ दो, मेरे घर में रहिए, और इन 1000 हाथों से मैं आपकी सेवा करूं प्रत्यक्ष, बोलो। बोले मैं अकेला नहीं हूं, तो मेरी पत्नी है पार्वती, उसको क्या करूंगे। बोले उसको भी ले आइए, तो मेरी सेवा तो तू करेगा, पार्वती की सेवा कौन करेगा। बोले महाराज मेरी बेटी उषा है ना, वो करेगी, हम दोनों बाप बेटी मिलकर आप और अपनी पार्वती की सेवा किया करेंगे। बोले चल तू सेवा करता है तो हमको क्या हर्ज है, भिक्षा मांगने जाना पड़ता था, तू घर में ही खिला देगा, कोई हर्ज नहीं है। भगवान शिव बाणासुर के ही रहने लग गए। तो शाम के समय खा पीकर शिव जी सोए हुए थे, 1000 हाथ से शिव जी के पांव दबा रहा था कौन। कितना बड़ा शरीर होगा शिव जी का भाई, ने? 1000 हाथ से भगवान शिव के पांव दबा रहा था। एक दिन दबाते दबाते कहने लगा उसने, महाराज आपकी कृपा से 1000 हाथ मुझे प्राप्त हुआ, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न उठता रहता है कि इन 1000 हाथ में कितनी ताकत है, वो नापने का थर्मामीटर नहीं मिल रहा है। बोले क्यों, क्योंकि कोई भी मैं जिससे लड़ना चाहता हूं, मैं जांचना चाहता हूं कि मेरे हाथ में कितनी ताकत है, मेरा नाम सुनते ही सब डर के मारे सरेंडर हो जाते हैं, कोई लड़ना सामने खड़ा ही नहीं होता है। तो आज तक कोई मेरे बराबर या मेरे से ज्यादा कोई मेरे से लड़ता हिम्मत करता तो मुझे पता चलता कि 1000 हाथ में कितनी ताकत है। आज तक ये जांचने का मौका ही नहीं मिला महाराज कितनी ताकत है। मेरी इच्छा है, और कोई नहीं मिलता तो नहीं सही, आपसे ही दो दो हाथ किया जाए, पता तो चले कि हाथ में भुजदंड में कितनी ताकत है। भगवान लेटे लेटे मुस्कुराए, अच्छा बेटा तुम्हारी यही इच्छा है, वो इच्छा भी पूरी हो जाएगी, तथास्तु। बोले कब महाराज, कब लड़ाई होगी, कब लड़ेंगे हम। बोले मुझे लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी इच्छा पूरा करने वाला एक और है, वो पूरा कर देगा। कौन। बोले वो द्वारिका में रहता है, वो पूरा कर देगा तुम्हारी इच्छा। कब महाराज। बोले जब तुम्हारा ये ध्वजा गिरेगा तब वो आएगा, ये समझ लो। अब बाणासुर रोज सुबह उठता था, बाहर जाके छत में अपना ध्वजा देखता था कि गिरा कि नहीं, वो समय आया कि नहीं है। तो एक दिन तो उषा ने स्वप्न देख लिया, अनिरुद्ध के साथ उसका प्रेम हुआ। अब उषा ने कह दिया कि मेरा ऐसा हुआ है, तो चित्रलेखा ने कह दिया कि कौन है बताओ। बोले मैं जानती तो समस्या न होती, स्वप्न में हुआ है। चलो स्वप्न में ही सही, जो भी होगा तीनों लोक में उसको मैं लाकर तुमको खड़ा कर दूंगा तुम्हारे सामने। मैं योगिनी हूं, योग शक्ति है मेरे पास। हां चित्र बनाया। पहले तो स्वर्ग के देवताओं के, इंद्र आदि के, जयंत आदि का फोटो बनाया। ये था तुम्हारे स्वप्न में आने वाला? बोले नहीं, ये था नहीं। फिर प्रसिद्ध जो राजा रजौड़े थे, राजकुमारों थे, उनका चित्र बनाया। ये था? नहीं। ये था? नहीं। तो चित्रलेखा ने विचार किया कि शायद द्वारिकावासी कोई आया होगा, तो कृष्ण का फोटो बनाया। ये था? बोले नहीं। कभी कभी कृष्ण भी जाता था काला। आप लोगों के आया कि नहीं, रात्रि स्वप्न में आया कि नहीं आप लोगों के पास? नहीं आया ना। चलो आजकल ईमानदार हो गया वो, नहीं तो हैरान करता था वो। तो बोले ये था? बोले नहीं। तब प्रद्युम्न का फोटो बनाया, कृष्ण का बेटा प्रद्युम्न। बोले मिलता मिलता तो है, लेकिन नहीं, पक्का तो नहीं है, लेकिन नाक भी उसे मिलता जुलता है, कान आंख गाल, लेकिन पक्का वो नहीं है। बोले हां, अब स्रोत मिल गया। तब अनिरुद्ध का फोटो बनाया दिखाया, तो बस लज्जित तो हो गई उषा, यही था। कौन है, कहां रहता है, मुझे तो यही चाहिए बस। उषा ने जिद कर दी, तो बोले चिंतानगर में उसको ला देती हूं। चित्रलेखा गई आकाश मार्ग से सोनितपुर से सीधा द्वारिका। हा, सोनितपुर माने तेजपुर, आसाम में है। सीधे द्वारिका पहुंच गई। रात के समय में सोए हुए थे अनिरुद्ध, चारपाई के सहित उठाकर लाई, ले तू अपनी इच्छा पूरा कर, बस अब खुश है? बोले अब खुश। अब उदा सुबह देखे तो द्वारिका में अनिरुद्ध गायब है ही नहीं, कहां गया, क्या हुआ? पता लगाया, कृष्ण ने कहा कि पता लगाओ। नारद जी पहुंच गए, नारायण, ए नारद जी क्या हुआ? मेरा बेटा क्रिंडम हो गया, पोता, बेटा नहीं, अपहरण हो गया। कहां गया? ओ बोले क्या हुआ? अच्छा, अरे मैंने उसको तो वहां देखा था भाई। कहां देखा था? तेजपुर, सोनितपुर, माणासुर की राजधानी में। अरे उसकी ये हिम्मत हो गई, कैसे गया, क्या हुआ? नारद जी ने सब इतिवृत्ति सुना दी। तो बोले उसके लड़के हम झगड़ा करके भी, युद्ध करके भी उसको ले आएंगे, लेकिन ये चौमासा हो गया, अब क्या करें? चौमासा पूरा होने दो तब जाएंगे। जहां चौमासा समाप्त तो हुआ कि उसका छत का जो है ध्वजा गिर गया, तो भगवान श्री कृष्ण इधर से चौमासा पूरा होते ही सेना दल बल के सहित तेजपुर में आक्रमण किया, युद्ध हो गया बाणासुर के साथ भयंकर, लड़ते लड़ते उधर शिवजी, इधर कृष्ण, नारायणी सेना और शिवसेना, महाराष्ट्र की नहीं दोनों लड़ रहे, शिव और कृष्ण दोनों लड़ रहे हैं। अंत में कृष्ण ने कहा कि हे भोले बाबा, कुछ तो मान रखो, ये युद्ध आपकी और मेरी प्रतिष्ठा का विषय हो गया है, मुझे तो इसको मारना तो था नहीं, सहमति कर लेते हैं। भगवान शिव ने कहा कि मेरा चेला है, उसके पक्ष में लड़ना मेरा फर्ज है, मुझे वह सुबह शाम दाल भात रोटी खिलाता है, अपने 1000 हाथों से वो सेवा करता है, तो उसके साथ मुझे लड़ना है, क्या करें? बोले नहीं नहीं ऐसा करो, हम उसको मारेंगे नहीं। हाँ, तो शिव जी ने कहा कि ऐसा करो, बहुत दिन हो गया लड़ते लड़ते, मुझे थोड़ा सोने की इच्छा है। कृष्ण को कहा जृम्मणास्त्र छोड़ दो, उससे मैं सो जाऊंगा, और जब तक मैं सोऊंगा तब तक तुम इससे लड़ते रहना। तो कृष्ण ने जृम्मणास्त्र छोड़ा, शिवजी सो गए। तो शिवजी सो गए तो बाणासुर की क्या हिम्मत थी कृष्ण से लड़ने की, एक एक हाथ काटते गिराते किया, जब दो हाथ बचे हैं तब शिवजी ने आंख खोली और जमुआई लेते हुए हा करते हुए, कभी कभी आप लोग करते हैं ना कथा सुनते सुनते, इसी तरह जमुआई लेते हुए भगवान शिव उठे, बस कृष्ण हो गया। इसका ये जो मेरे द्वारा दिए गए 1000 हाथ का घमंड था वो घमंड गया, संधि कर लो अब। तो क्या करें महाराज, हमको तो अपना पोता चाहिए। बोले ठीक है, पोता भी ले जाओ, बोनस भी ले जाओ, है साथ में बोनस भी ले जाओ। मतलब बोले उषा को भी ले जाओ पोते, उषा को भी शादी कर दो, वह हो गया काम। बस शादी हो गई। पूजा हां सेवा न जाने महे, जाने विभोह व्यर्थम। पर अब प्रसंग क्या था, पाणासुर ने सब कुछ छोड़कर एकमात्र शिव भक्ति की, उससे बाणासुर को सारा साम्राज्य मिल गया। उसको अब क्या सो उदर पूर्णाय इतस्तत भटकने की जरूरत पड़ेगी? उसको क्या अब आश्रम बनाने के लिए, पैसा मांगने के लिए कहीं जाने की जरूरत पड़ेगी? शायद हम कथा तो कर देते हैं, शिव में भक्ति नहीं करते, इसीलिए नेपाल से बंबई कथा करने आ जाते हैं। किसके लिए बोलो, है दक्षिणा के लिए बोलो और क्या। वित्ताशय, ये शंकराचार्य जी ने कह दिया, नित्यम सोदर पूर्णाय सकला उद्दिश्य वित्ताशय व्यर्थम पर्यटनम करोमि भवत सेवाम न जाने विभो। हे विभो, हे व्यापक परमात्मा, भवत सेवाम न जाने, यदि मुझे मालूम होता कि आपकी सेवा करने से सब कुछ प्राप्त होता, ये मेरी जो मूर्खता है, अज्ञानता है, उस अज्ञानता के चलते आपकी सेवा में प्रवृत्त न होकर बस ये 2-4 पैसों के लिए मैं घूमता रहता हूं। हा, दिल्ली सरोवा जगदीश्वरोवा मनोरथान पूरयितुं समर्थ अन्यै नृपालै परिधीयमाना साकाय वास्याल् लवणाय वास्यात्। एक कवि हुए, बहुत बड़े विद्वान हुए, बड़े अच्छे कविता लिखते थे। उनको कहा, ऐसे बढ़िया बढ़िया कविता तुमने लिखी है, राजा को सुनाओगे तो राजा बहुत धन देगा, राजा की प्रशस्ति लिखो। और उनकी कविता में हमेशा जगदीश्वर की ही प्रशस्ति लिखा करते थे, भगवान की प्रशंसा, परमात्मा की प्रशंसा लिखा करते थे। किसी ने कह दिया कि ये भगवान की, जगदीश की, इनकी गुणानुगात गाने की अपेक्षा राजा के बारे में तुम कविता लिखो तो बहुत धन संपत्ति देगा। उन्होंने कहा, ये जो राजा लोग प्रसन्न होकर जो धन संपत्ति देते हैं ना, उससे मेरा होगा क्या? मेरी इच्छा को पूरा करने की सामर्थ्यता केवल 2 व्यक्ति में है, एक तो चक्रवर्ती सम्राट दिल्ली सरोह, उस समय का भूपति चक्रवर्ती सम्राट, जैसे विक्रमादित्य आदि चक्रवर्ती सम्राट हुए, हरिश्चंद्र आदि चक्रवर्ती सम्राट हुए, मानधाता आदि ये चक्रवर्ती सम्राट हुए, भूपति हुए। और सही रूप में ये भी मेरी सारी मनोरथ को पूरा नहीं कर सकते, मेरी सारी इच्छा को पूरा करने वाला तो जगदीश्वर है। दिल्ली सरोवा जगदीश्वरोवा मनोरथान पूरयितुं समर्थ। और जिस राजाओं के बारे में तुम कह रहे हो ना कि इनकी प्रशस्ति लिखो तो इनकी प्रशंसा करो तो तुम्हें खूब धन मिलेगा। अन्यै नृपालै परिधीयमाना, ये जो छुटमुटे जो राजा है ना, उन लोगों उनका, उनके द्वारा दिया गया जो संपदा है, वैभव है, पैसा है, उस तो उससे तो मेरा साकाय वास्या लवणाय वास्या, एक दो दिन की तरकारी सब्जी के लिए पूरा होगा या नमक के लिए पूरा होगा, मेरे समस्त प्रयोजन को पूरा करने की क्षमता इन रजवाड़ों में नहीं है। या तो चक्रवर्ती सम्राट में है और सभी मनोरथ को पूरा करने वाला तो जगदीश है, और उसी जगदीश का नाम है भगवान शिव। इसीलिए मैं गुणानुवाद गाऊंगा तो उसी का गाऊंगा। ये मरण स्थिर मरणशीला ये तुच्छ क्षुद्र राजाओं की प्रशंसा करके दो चार कौड़ी के लिए इनकी प्रशंसा करूं, अकेले सारा समृद्धि देने में वो जगदीश्वर समर्थ है, उसी की प्रशस्ति करूंगा। लेकिन यहां शंकराचार्य जी कहते हैं सेवाम भवता सेवाम न जाने विभो, तो अब क्या करोगे? मत जन्मांतर पुण्य पाक बलत तम सर्व सर्वांतर। ओहो आश्चर्य की बात है, मेरा पूर्व पूर्व जन्म का कोई शुभ कर्म पुण्य कर्म तीव्र प्रारब्ध बनकर आज फल देने के लिए आया, तब मुझे बुद्धि आई कि अरे ये सारा प्रयोजन सिद्ध करने वाले तो शिव जी है, उसके शरण में उसके पूजा करो उसके आराधना करो तो सभी प्रयोजन पूरा हो जाएगा। ये बुद्धि तो आज आई है, आज आई है। ये बुद्धि पहले आई होती तो मैं भटकता एक एक रोटी टुकड़ों के लिए एक एक कौड़ी के लिए मैं भटकता इतस्तत। लेकिन जो हुआ है जो हुआ, अब तो मैं सो उधर पूरण के लिए रोटी के टुकड़ों के लिए इधर उधर भटकूंगा नहीं, दो कौड़ियों के लिए किसी की प्रशस्ति गान नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरे पुण्य का फल है कि समझ में आ गया कि भगवान के चरण को छोड़कर अन्यत्र जाना उचित नहीं है, अन्यत्र से प्रयोजन पूरा नहीं होने वाला। मत जन्मांतर पुण्य पाक वलतस तम सर्व सर्वांतर। हे शिव तुम सर्वरूप हो और सबके अंदर रहते हो, और सबके अंदर रहते हो तो मेरे अंदर भी रहते हो। सर्वांतर तिष्ठस्येव, रहते ही हो तो अपने ही हृदय में विराजमान सर्वशक्तिमान आपकी आराधना पूजा आदि न करके मैं कैसा मूर्ख बाहर बाहर भटकता रहा। तिष्ठस्ये बहिते न वा पशुपते ते रक्षणीयोस्मि हम। अब तो रोटी के टुकड़े खाने न मिलकर मैं यदि मरना पड़े भी तो भी मैं किसी के यहां जाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे हृदय में रहने वाले आपको तो पता ही है कि मेरी प्राण की रक्षा के लिए आप है। इसीलिए तो कहा है संतों ने, कहा है बड़े ज्ञानी संतों ने कहा, का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वंभरो गीयते नोचे दर्वक जीवनाय जननी स्तन्यम कथम निस्सरेत इत्यालोच्य मुहुर्मुहुर यदुपते लक्ष्मीपते केवलम त्वत्पादाम्बुज सेवने हि सततम कालो मया नीयते। मुझे अब क्या चिंता करनी है, का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वंभरो गीयते। शास्त्रों ने गुरुओं ने आचार्यों ने महापुरुषों ने परमात्मा को विश्वंभर ये कहा है तो ठीक ही कहा होगा, क्योंकि वह सारे विश्व का भरण पोषण करता है, इसीलिए उसका नाम विश्वंभर है। जब उसका नाम विश्वंभर है तो फिर मैं क्यों चिंता करूं, विश्व से बाहर हूं मैं है? मैं विश्व से बाहर तो है ही नहीं, वो विश्वंभर है मैं विश्व से बाहर नहीं हूं, इसका मतलब मेरा भरण पोषण करना उसका कर्तव्य है कि नहीं, उसको चिंता है कि नहीं मेरे भरण पोषण की, अवश्य है। नोचेद मुझे पक्का विश्वास हो गया कि वो विश्वंभर है। यदि वो विश्वंभर न होता, स्तन्यम कथम निस्सरेत, जननी स्तन्यम कथम निस्सरेत। अभी अभी पैदा हुआ हुआ बच्चा बाहर के किसी भी भोजन से अपनी प्राण की रक्षा और जीवन की रक्षा नहीं कर सकता, ये बात उसको पता है। किसको? विश्वंभर को। तब वो जन्म लेने से पहले ही ठीक 15-20 दिन पहले जननी स्तन्यम निस्सरेत, वही दाल भात रोटी खाती है वो मां, और बच्चा पैदा होने के समय से पहले स्तन में दूध नहीं आता, और जब पैदा होने का समय होता है पीरियड आता है ठीक टाइम में, पैदा होते ही बाहर के अन्नों से उसके प्राण की रक्षा नहीं होगी ये जानता है, इसलिए उसी दाल भात रोटी तरकारी से स्तन में दूध तैयार कर देता है, निर्माण कर देता है। पैदा होने से पहले उसकी प्राण रक्षा की चिंता उसको है, तो पैदा होने के बाद उसको चिंता नहीं होगी? बोलो, जन्म से पहले उसको इतना चिंता है, तब क्या जन्म लेने के बाद उसकी चिंता नहीं करेगा? वो करेगा। और आश्चर्य की बात है, जब वो धीरे धीरे 4-5 साल का होता है, बाहर के भोजन से अन्न से उस अपनी प्राण की रक्षा करने लायक हो जाता है, पचाने के लायक हो जाता है, तब फिर उस मां के स्तन के दूध गायब कर देता है। कौन? बनाना छोड़ देता है, वही विश्वंभर। अब ये बाहर के अन्न से ये जी जाएगा अपने आप ही, ये उसकी व्यवस्था है। तो वो उसको इतनी चिंता है, तो फिर मैं क्यों चिंता करूं अपने बारे में? का चिंता मम जीवन है यदि हरि विश्वंभरो गीयते, नो चित अर्भक जीवनाय जननी स्तन्यम कथम निस्सरेत इत्यालोच्य। ये देखकर, ये विचार करके, मोहर यदुपते लक्ष्मी पते केवलम। तो मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं तोत्पादाम भुज सेवने ही सततम कालो मया नियते, आगे मैं अपने पेट के भरण पोषण की चिंता भी नहीं करूंगा, केवल चिंतन करूंगा तोत्पादाम भुज सेवने, सतत तुम्हारे चरण का ही सेवा करूंगा, बाकी मेरे योगक्षेम की व्यवस्था तुम करो, मैं अब और चिंता नहीं करूंगा। कालो मया नियते, लगभग वही कह रहे हैं शंकराचार्य जी, इसी भाव को यहां शिव जी के सामने रखे हैं। पहले आपकी महिमा को नहीं जानता था, तब उधर पूर्ति के लिए मैं इतस्तत भटकता रहता था, दो कौड़ियों के लिए मैं इतस्तत भटकता था, और ये मैं नहीं जानता था कि सारा विश्व के साम्राज्य देने में आप समर्थ हैं और आप विश्वंभर हैं, इस बात को नहीं जानता था इसलिए भटकता था। अब मैं, ये मेरे पूर्व जन्म के किसी पुण्य के फल के रूप में मुझे ये बुद्धि, ये समझ आ गई कि आप वास्तव में तो मेरे ही हृदय में है, वास्तव में विश्वंभर है, सर्व सामर्थ्यताशाली है, तब अपने मेरे हृदय में है, तो अब आगे के जीवन की रक्षा करने का काम किसका? बस आपका है। नित्यम सोदर पूरणाय सकलानुद्दिश्य वित्ताशया व्यर्थम पर्यटनम करोमि भवत सेवाम न जाने विभो, मज्जन्मांतर पुण्य पाक बलत तत्त्वं सर्व सर्वांतर तिष्ठस्येव, सर्व सर्वांतर तिष्ठसि एव, तो फिर सबके हृदय में तुम विराजमान हो, तो क्या मेरे हृदय खाली होगा? मेरे हृदय में भी आप बैठे हो, तब तेनवा पशुपते, मैं पशु हूं, घास डालने का काम आपका, क्या डालने का काम, भूसो डालने का काम आपका भाई, मैं पशु हूं आप भूसो डालो है, और क्या, पशु को खिलाने का काम तो आपका है ना, ते रक्षण योस्मि हम, मेरी रक्षा अब आप ही करना। शिवानंद लहरी में ये श्लोक रत्न है, ये जो अब श्लोक जो आ रहा है बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। जब हमने पहली बार शिवानंद लहरी पढ़ी और पढ़ते पढ़ते हमारी दृष्टि श्लोक में पहुंची तो ये श्लोक हमारे हृदय में ऐसा जम गया कि कभी भी भूल नहीं सकते है? बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। अब भगवान शिव शंकराचार्य भगवान शिव के सामने खड़े होकर हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना करते हैं। एको बार जबांधव क्षिति नभो व्याप्तम तमो मंडलम भित्वा लोचन गोचरो भवती तुम कोटि सूर्य प्रव विद्य किम न भवस्य हो घनतरम कीदृक् भविन्मत्तमास तत्सर्वं विपनीयमे पशुपते साक्षात प्रसन्नो भव। हे पशुपते, अनादिकाल से मेरे हृदय में अविद्या इस तरह जमकर बैठ गई है, अज्ञान ऐसा बैठ गया है जिससे आज तक मैं मूर्खता ही कर रहा हूं। उस अज्ञान को आप हटा क्यों नहीं देते हो? अब उपमा दे रहे हैं, बड़ा सुंदर भाव है इसमें। एको बारी जवान धवा, वारी ज, वारी माने पानी, वारी ज माने वारी ज पानी से पैदा होने वाला कमल, वारी ज बादल का नाम, तो वारी द है पानी देने वाला, वारी ज नहीं है बादल का नाम, वारी ज माने कमल पानी से पैदा होने वाला, और उस कमल का मित्र वारी ज बंधु, मित्र कौन है, मित्र किसका नाम है, सूर्य का है? वारी ज बंधु आपका मित्र आपके पास आवे तो आपका मुख खिलता है कि नहीं, प्रसन्न होता है कि नहीं, बोलो है? आपका पुराना सा पुराना खास हम खास मित्र आए और कल में दरवाजे में बेल बजावे और आप दरवाजा खोलो और ठीक सामने वो खड़ा होगा तो आपके मुख कमल खिलेगा कि नहीं, बोलो, आप रोने लग जाओगे उस समय है? इसी तरह कमल खिलता कब है, सूर्य उदय होता है तब कमल खिल उठता है, वारी ज खिल उठता है किसके चलते, तो सूर्य के चलते, तो सूर्य कौन हो गया, वारी ज बंधु मित्र, एक अकेला है अंतरिक्ष में, पूरे अंतरिक्ष में वारी ज बंधु कितने हैं, एक ही तो है। एको वारी ज बांधव यानी सूर्य अकेला है अंतरिक्ष में। प्रातः काल वह सूर्य पूर्व दिशा से उदित होकर करता क्या है, क्षिति नभो, क्षिति नभो व्याप्तम तमो मंडलम, रात भर पृथ्वी और अंतरिक्ष सबको ढककर व्याप्त होकर रहने वाला अंधकार को तमोमंडलम अंधकार रूपी जो अंधकार का घना है, कहां तक फैला हुआ है वो अंधकार? पूरी पृथ्वी में और अंतरिक्ष में भी फैला हुआ है। क्षिति नभ व्याप्तम तमोमंडलम अंधकार, उसको क्या करता अकेला सूर्य? भीत्वा भेदन कर देता है, नष्ट कर देता है। अपनी उपस्थिति मात्र से पृथ्वी और अंतरिक्ष में फैला हुआ इतना बड़ा अंधकार समूह को वो अकेले ही नष्ट कर देता है। भीत्वा, और केवल उसको नष्ट करता है, अंधकार को नाश करता है, इतने ही नहीं, लोचन गोचरोपि भवति, प्रत्यक्ष चक्षु का विषय भी बनता है। हर व्यक्ति के आंखों से प्रत्यक्ष दिखाई भी पड़ता है, अपने आप को वो प्रत्यक्ष भी करता है, सबके सामने प्रकट भी करता है। कौन? सूर्य। बारी जबंधु एको बारी जबंधवा क्षिति नभो व्याप्तम तमो मंडलम भीत्वा, उस अंधकार को नष्ट करके लोचन गोचरोपि भवति, प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है, परोक्ष भी नहीं, प्रत्यक्ष दृष्टि का विषय बनता है वो। और तुम कोटि सूर्य प्रभ, और हमने ये सुना है, पढ़ा है, एक सूर्य में ये ताकत है, ये सामर्थ्यता है, तब उस सूर्य की जो क्षमता प्रकाश है, सामर्थ्यता है, ऐसे तो करोड़ों सूर्य बराबर तक आपके आप में वो प्रकाश विद्यमान है, करोड़ों सूर्य। और आप में जो प्रकाश विद्यमान है उसकी एक चिंगारी उस सूर्य को मिला है, और उतनी मात्रा से सूर्य क्षिति नवो व्याप्तम तमो मंडलम भीत्वा लोचन गोचर भवति, उस अंधकार समूह को नष्ट करके प्रत्यक्ष दृष्टि का विषय बन जाता है सूर्य। और ऐसे सूर्य में जितनी प्रकाश है वैसे करोड़ों सूर्य के प्रकाश के बराबर आप अकेले में वो प्रकाश विद्यमान है। आप रहते कहां हो महाराज? ऐसे प्रकाश वाले आप रहते कहां हो? हृदय में। और तुम्हारी अनादिकालीन जो मूला अविद्या कहां रहती है? हैं? अविद्या खोपड़ी में रहती है कि हृदय में? बोलो। वैज्ञानिक लोग तो खोपड़ी में रहती है कहते हैं, अज्ञान। लेकिन हमारा वेदांत तो कहता है कि हृदय में ही वह अविद्या रहती है। और आप कहां रहते हो? आप भी हृदय में रहते हो और वो अज्ञान भी हृदय में रहता है। बोलो। और हृदय कितना बड़ा है ये देख लो, हृदय कितना बड़ा है? अंगुष्ठ मात्र। अंधकार कहां रहता था? क्षिति नभ व्याप्त, इतना बड़ा पृथ्वी और आकाश सबको व्याप्त करके रहता था वह अंधकार। इतना बड़ा अंधकार को तो सूर्य ने अकेले नष्ट कर दिया, और सूर्य में जो रोशनी उसे करोड़ों गुना ज्यादा रोशनी आप अकेले में है, और आप रहते हो उसी हृदय में, और ये अनादि अज्ञान रहता कहां है? उसी हृदय। फिर क्या उस अज्ञान को नष्ट करने की क्षमता आप में नहीं है ये माना जाए? बोलो। उस अज्ञान को नाश करने की क्षमता आप में नहीं है ये माना जाए? मैं ऐसा मानूं? ऐसा तो संभव नहीं है। फिर आश्चर्य की बात है कि वो अज्ञान आपके साथ रह कैसे गया? बोलो। वो अज्ञान, वो तम, वो अंधकार, मूला विद्या आपके ही साथ उसी हृदय में रह कैसे गया हो? क्या मैं ये मानूं कि उसको नष्ट करने की क्षमता आप में नहीं है? यदि आप उसको नष्ट नहीं कर पाओगे तो दुनिया में कोई भी नष्ट नहीं करेगा। हाँ, एको बार जबांधव चिति नवो व्याप्तम तमो मंडलम भित्वा लोचन गोचरोपि भवति। यहां तक दृष्टांत। और तम कोटि सूर्य प्रभा है ना, गीता के 11वां अध्याय में सुना ना आप लोगों ने, स्वाध्याय में, दिवि सूर्य सहस्रेशु भवेद युगपद उत्थितम यदि सा सदृशी यति भा सदृशी सास्यात् भासस्तस्य महात्मा। ना अर्जुन ने कहा, महाराज आपके स्वरूप में जो रोशनी है, प्रकाश है, उस प्रकाश की मात्रा कितनी है? दिवि सूर्य सहस्रेशु, अंतरिक्ष में उदित होने वाला 1000 सूर्य का प्रकाश एक ही साथ प्रकट हो तो कितना रोशनी, कितना प्रकाश हो सकता है? उससे भी ज्यादा आप में भा, वो प्रकाश तो आप अकेले में है। तो दिन के समय के एक सूर्य को मैं आंख खोल कर नहीं देख सकता था, आपके उतना प्रचंड हजारों सूर्य जैसे प्रकाश को मैं आंख खोल कर कैसे देखूं? महाराज मेरी आंख तो चौंधा गई है, मैं तो नहीं देख पा रहा हूं। देखो परमात्मा में कितनी प्रकाश है, ये तुलना अर्जुन ने तो 1000 सूर्य की गणना कराई, शंकराचार्य तो 1 करोड़ सूर्य की गणना करा रहे। बोलो, तुम कोटि सूर्य प्रभा, 1 करोड़ सूर्य का जो प्रकाश होगा उतना प्रकाश तो आप अकेले में है। बोलो, वेद्य किम न भवस्य हो, फिर भी ऐसा प्रकाश वाले आप उसी हृदय में रहते हैं और मैं कहां रहता हूं? बोलो, मैं जहां रहता हूं वहीं आप भी रहते हो और अनादिकालीन जो मूला विद्या है वो कहां रहती है? वो भी वहीं रहती है जहां मैं रह रहा हूं, जहां आप रह रहे हैं, जहां हम दोनों रह रहे हैं, वहीं वो अविद्या भी रह रही है। ले जी, किसी एक ने कविता लिखी है ना, मुझे याद आ गया, मैं और मेरे राम एक ही बस्ती में बसते हैं, मैं मेरे राम एक ही बस्ती में बसते हैं। यहां तो शंकराचार्य जी बस्ती की बात नहीं कर रहे, कमरे की बात कर रहे हैं। ये तो बस्ती तो एक गांव है, ये शरीर है ना, और इस शरीर के अंदर रहते हैं, मैं भी वहीं रहता हूं, मेरे राम भी वहीं रहते हैं। हो सकता है मैं इस शरीर के किसी कोने में रह रहा हूं, मेरा राम किसी और कोने में रह रहा हो। बंबई में तो एक ही बिल्डिंग में रहने वाला एक दूसरे को नहीं जानती है, जानते हैं? एक ही फ्लोर में रहने वाले एक दूसरे को नहीं जानते हैं, एक भी बिल्डिंग में रहने वाले एक दूसरे को नहीं जानते, वर्षों रहने पर भी नहीं जानते। तब फिर पूरे बंबई में रहने वाले सबको कौन जानता है? तो यहां तो बस्ती की, उस कवि ने तो बस्ती की बात कर दी थी, शंकराचार्य जी तो बस्ती की बात नहीं करते, कमरे की। मैं और मेरे राम एक ही बस्ती में बसते हैं, किस्मत की खूबी है कि दर्शन को तरसते हैं। देख लो, ये किस्मत की खूबी है, ये दर्शन के लिए तरस रहे हैं, नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि एक ही कमरे में भी बीच में एक काला पर्दा हो तो पर्दे के उधर को इधर का व्यक्ति उधर को नहीं देखता, उधर का व्यक्ति इधर नहीं देखता। शायद यहां पर भी यही हुआ है, हैं? यहां पर भी यही हुआ है। एक ही शरीर में, एक ही हृदय में, एक ही कमरे में मैं और मेरे राम हम दोनों रहते हैं, लेकिन बीच में एक पर्दा जो आ गया है उसके चलते आज तक दर्शन नहीं हो पा रहा है, हैं? यही कह रहे हैं शंकराचार्य। एको बार जबांधव चिति नभो व्याप्तम तमो मंडलम भीत्वा लोचन गोचरोपि भवति त्वं कोटि सूर्य प्रभा विद्या किम न भवसी अहो घनतरम। सूर्य तो वेद्य हो जाता है, अंधकार को हटाता है और खुद भी वेद्य हो जाता है, सबके आंख के प्रत्यक्ष का विषय बन जाता है। अब त्वं कोटि सूर्य प्रभा और त्वं वेद्य किम न भवसी, फिर भी आपको मैं क्यों नहीं जान पा रहा हूं, है? मेरे लिए प्रत्यक्ष क्यों नहीं हो रहे हो, आप वेद्य क्यों नहीं हो रहे हो? वेद्य किम न भवसी, क्या मैं ये मानू? अहो घनतरम किदृक् भवेन मत्तमा, क्या ये मैं मानू? अहो घनतरम किदृक् भवेन मत्तमा, मत्तमा मुझ में आश्रय करके रहने वाली तम और मुझको ही विषय करने वाली तम, मत तम, बोलो अज्ञान का आश्रय कौन? अज्ञान का आश्रय कौन? आत्मा, चेतना, आत्मा, ब्रह्म। और अज्ञान का विषय कौन? आश्रयत्व विषयत्व भागिनी निर्विभाग चितिरेव केवला पूर्व सिद्ध तमसोपि पश्चिमो नाश्रयत्व भवति नाति गोचर। तुमने बोल तो दिया कि अविद्या का आश्रय परमात्मा, अविद्या ने ढका किसको? अभी तो कह रही थी जीवात्मा को। अविद्या का विषय कौन? तो अभी जीव क्यों कहा था? जीव अविद्या का आश्रय भी नहीं हो सकता, अविद्या का विषय भी नहीं हो सकता। जीव अविद्या जीव में आश्रित भी नहीं रह सकती, जीव के स्वरूप को ढक भी नहीं सकती। ये ध्यान देना। हाँ, तो अविद्या का आश्रय जो होगा वही विषय होगा, समझे कि नहीं? जीवात्मा को अविद्या क्यों नहीं ढक सकता? क्योंकि आप बता सकते हो पहले अज्ञान है कि जीव है, हैं? पहले जीव है फिर उसके बाद अज्ञान है, कि पहले अज्ञान है फिर उसके बाद जीव है, हैं? क्या लग रहा है तुम्हें, दोनों में से कौन पहले कौन बाद में है, हैं? पहले अज्ञान है, अविद्या है, उस अविद्या के चलते जीव हुआ, तो कारण अज्ञान, जीव अज्ञान का कार्य। पंचदशी में विद्यारण्य मुनि जी ने यहां अज्ञान शब्द का अर्थ माया भी ले लेना, माया रूपी गाय के दो बछड़े हैं ऐसा कहा है। वो किसके? माया रूपी गाय के दो बछड़े हैं। दो बछड़े कौन कौन है? एक जीवात्मा, एक ईश्वर। हाँ बोलो, एक जीवात्मा, दूसरा ईश्वर। ईश्वर पहले है कि माया पहले है, बोलो। ऐसे गैस कर रही हो कि फिक्स कर रही हो? ये है, कभी कभी ठोक देते गैस करके, लग गया तुक्का नहीं तो मुक्का। पहले माया है, माया में प्रतिबिंबित चैतन्य ईश्वर। माया का दूसरा पक्ष अविद्या, अविद्या में प्रतिबिंबित चैतन्य जीव। माया उपहित चैतन्य ईश्वर, अविद्या उपहित चैतन्य जीव। परवस जीव सोवस भगवंता, ए विद्यारण्य मुनि जी ने इसका संकेत कर दिया पंचदशी में। माया बिंबो वशीकृत्य तामस्यात सर्वज्ञ ईश्वरा। माया में प्रतिबिंबित जो चैतन्य है उसने माया को अपने वश में रखा, अपनी उपाधि को अपने वश में जिसने रखा उसको ईश्वर कहा गया। अपनी उपाधि को अपने वश में रख नहीं सका, उपाधि के ही वश में होकर बैठ गया, उसका नाम जीवात्मा। इसीलिए परवश जीव, परवश माने उपाधि वश में रहने वाला जीव, और स्वश भगवंता ईश्वर। माया को अपने वश में रखने वाला भगवान ईश्वर, माया के यानी अविद्या के वश में जाने वाला जीवात्मा। इसे क्या सिद्ध हो गया? ईश्वर और जीवात्मा दोनों माया के द्वारा पैदा किए हुए हैं। अब माया यानी अविद्या का आश्रय कौन? ईश्वर की जीव। माया का आश्रय ईश्वर की जीव। माया का आश्रय न ईश्वर हो सकता है न जीव। हाँ, तो माया का आश्रय कौन होगा? माया से पहले जो सिद्ध होगा वो माया का आश्रय होगा। तो माया से पहले कौन सिद्ध है? ब्रह्म, परमात्मा। माया से पहले परमात्मा सिद्ध होने के कारण माया का आश्रय परमात्मा ही हुआ, और माया का आश्रय परमात्मा हुआ तो माया ने ढका किसको? ईश्वर को कि जीव को? ब्रह्म को ही, परमात्मा को ही ढका है, जीव को नहीं ढका है। अविद्या से जीव ढका नहीं है। तुम जीव हो कि ब्रह्म हो अभी क्या मान रहे हो अपने को? जीव मान रहे हो ना? जीव का लक्षण क्या है? कर्ता भोक्ता सुखी दुखी पुण्यात्मा पापात्मा, ये सब किसका लक्षण है? जीवात्मा का। ये ढका है क्या है? बोलो, मैं सुखी, मैं दुखी, मैं पापी, मैं पुण्यात्मा, ये किसका लक्षण है? जीव का। ये ढका हुआ है क्या? नहीं ढका है। इसलिए अविद्या ने इसको विषय नहीं किया है। ये शुरू ढका होता तो तुम्हें पता ही नहीं चलता कि मैं सुखी हूं कि दुखी हूं, मैं करता हूं कि भोगता हूं कि नहीं हूं। ये ढका नहीं है। लेकिन ढका किसको? सत चित आनंद अद्वितीय स्वरूप को ढका है। और ये स्वरूप किसका है?
ब्रह्म का, तो इसका मतलब क्या हुआ? ब्रह्म में ही आश्रित है और ब्रह्म के ही स्वरूप को ढक रहा है। तुम जीवात्मा हो ना, तुम अपने को नहीं जानते हो कि ब्रह्म को नहीं जानते हो? बोलो बोलो ना, तुम अपने को नहीं जानते हो कि ब्रह्म को नहीं जानते हो? इसका मतलब ढका ब्रह्म है ना। यदि तुम्हारा ढका हुआ होता तो तुम अपने को भी नहीं जानते, और तुम अपने को जान ही रहे हो, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, पुण्यात्मा हूं, पापात्मा हूं, जन्मने वाला हूं, मरने वाला हूं, करता हूं, भोगता हूं, तो तुम तो, तुम्हारा स्वरूप तो ढका नहीं है, जीव का स्वरूप तो ढका नहीं है, ब्रह्म का स्वरूप ढका हुआ है। तो अब उस अविद्या को नष्ट कौन करेगा? बोलो, उस अविद्या को नष्ट कौन करेगा? किस अविद्या को? ब्रह्म में आश्रित रहकर ब्रह्म के ही स्वरूप को ढकने वाली अविद्या को नाश कौन करेगा? जीवात्मा करेगा कि ब्रह्म करेगा? जीवात्मा करेगा, उसको नाश जीवात्मा करेगा। ठीक कह रहे हो, जिसको समस्या पड़ रही है वही करेगा। अब ब्रह्म के स्वरूप का अपरोक्ष न होने की समस्या किसको है? ब्रह्म को है कि जीव को है? ब्रह्म के स्वरूप का अपरोक्ष न होने की समस्या जीवात्मा को है, इसलिए जिसको जो समस्या है वही उसका निदान करे, तो नाश कौन करेगा? जीवात्मा करे। तब जीवात्मा नष्ट करेगा उस अविद्या को, परमात्मा में ब्रह्म में आश्रय करके बैठी हुई और ब्रह्म के स्वरूप को ढकने वाली अविद्या को जीवात्मा नाश करेगा। तो जीवात्मा बचा रहेगा क्या? अविद्या नाश होते ही जीवात्मा नष्ट होगा कि नहीं? हैं? बोलो। तो आजकल अपनी हत्या करने के लिए अपने हाथ से हथियार उठाते हैं कि नहीं? सुसाइड करते हैं कि नहीं? बोलो ना, कौन करता है सुसाइड? जो दुखी होते हैं वही ना सुसाइड करते हैं। हैं? कौन करता है सुसाइड? व्यवहार में जो दुखी होते हैं वो लोग सुसाइड करते हैं। अब तुम दुखी हो तो क्या करो? सुसाइड करो। हैं? तुम सुसाइड करो। कैसे भाई? जीव भाव को नष्ट कैसे करोगे? अज्ञान को नाश करोगे तो तुम्हारा जीव भाव नष्ट होगा। तो क्या हो, सुसाइड हुआ कि नहीं? तो हम वेदांती तो सुसाइड करने सिखाते हैं भाई। हाँ, तुमको मरना सिखाते हैं, सुसाइड करना सिखाते हैं। और किससे मारेंगे भाई? अपने आप को। हा, अंतकरण की अखंडाकार वृत्ति से पहले किसका नाश करोगे? वो वृत्ति से अविद्या का। और अविद्या यदि नष्ट हो गया तो उस अविद्या से तैयार हुआ हुआ जीव भाव बचा रहेगा? सुसाइड हो गया कि नहीं? अपने प्रयत्न से अपना ही विनाश कर लिया, अब जीव जीव ही नहीं रहा, तो फिर क्या रह गया? ब्रह्म रहा। यही तो लक्ष्य है। तो यहां शंकराचार्य जी कहते हैं कि मैं सुसाइड नहीं कर पा रहा हूं। हाँ, मैं सुसाइड नहीं कर पा रहा हूं, इसीलिए आपको ढकने वाली अविद्या को मैं नष्ट नहीं कर पा रहा हूं। फिर कौन नष्ट करे? बोले आप खुद ही नष्ट कर दो। हम आपके शरण में हैं, आप खुद ही उस अज्ञान को नष्ट कर दो। ये भाव है इसका। एको बार जबांधव चिति नभो व्याप्तम तमो मंडलम विद्वालोचन गोचरोपि भवति त्वं कोटि सूर्य प्रभ व्यद्य किम् न भवसि अहो घनतरम किद्रिक भवेन मत तमा। मेरे ही हृदय में रहने वाला अविद्या मूला विद्या अनादिकालीन मूला विद्या किद्रिक भवती कैसा है कैसा घनतर है, है? क्या आप उसको नष्ट नहीं कर पा रहे हो? बोले आपके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है उसको नष्ट करना, लेकिन आप प्रसन्न नहीं हो मेरे प्रति, ये मेरे स्वरूप का दर्शन कर ले वे, ये आपके हृदय में ये संकल्प नहीं हुआ है, इसलिए वो अविद्या का पर्दा आज तक पड़ा हुआ है। और आप यदि संकल्प कर लो मेरे ही कर्म कमरे में रहने वाला एक व्यक्ति है आज तक मेरा दर्शन नहीं कर पा रहा है, किसके चलते? बोले ये पर्दे के चलते है, उसको पता नहीं है कि जिस कमरे में वो रह रहा है उसी कमरे में मैं भी रह रहा हूं, उसको पता नहीं। मुझे पता है कि जिस कमरे में मैं रह रहा हूं उस कमरे में वो भी रह रहा है, फिर भी वो मुझे नहीं देख रहा है। क्यों? क्योंकि बीच में एक पर्दा है, इस पर्दे को हटा देता हूं करके आप थोड़ा सा हटा दो तो फिर वो दूसरा कमरे में रहने वाला है न चाहते हुए भी देखेगा कि नहीं, बोलो। पर्दा यदि हटा देगा तो न चाहते हुए भी देखेगा कि नहीं? तो महाराज आप ही हटा दो पर्दा, बस उस पर्दे को उस अविद्या को उस मूला विद्या को आपकी कृपा हो तो वो हट जावे, नहीं तो वो पर्दा हटने वाला नहीं है। भगवान ने कह दिया है ना गीता में, दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे। महाराज शंकराचार्य जी कहते मैंने गीता में ये पढ़ी है, मेरी माया को माया उपलक्षित अविद्या यहां प्रसंगिक के अविद्या, अविद्या को कोई जीवात्मा चाहे अकेले अपने बलबूते पर उसको तहस नहस करना चाहे किसी काल में संभव नहीं, दुरत्यया है वो नहीं हटा सकता है। और यदि माम ये वे प्रपद्यन्ते मेरे शरण में आता है और मेरे से कहता है कि महाराज वो पर्दा हटा दो, मैं कहूं उस जीव को ये पर्दा हटा और मेरा दर्शन कर, वो जीव सिर फोड़ लेवे, पर्दा हटा नहीं सकता, समझे कि नहीं? और तब वो नहीं हटा पाएगा तो वो यदि कहे महाराज मैं नहीं हटा पा रहा हूं आप हटाई दिए, तो मैं तो एक सेकंड में हटा देता हूं, ये गीता का श्लोक का यही अर्थ है ये। और मैं जब हटा दूंगा तो आमने सामने अपरोक्ष हो गया कि नहीं, बोलो? ये तो वही शंकराचार्य जी कहते हैं तत्सर्वम व्यपनीय मे पशुपते मैं अविद्याम, मेरे के हृदय में रहने वाली वो जो मूला विद्या है वो पर्दे की तरह अनादिकाल से आप भी वही हैं मैं भी वही हूं, फिर भी ना आपका दर्शन मैं कर पा रहा हूं, आपको पता है कि मैं भी वही हूं, आप मुझे जानते हो मैं आपको नहीं जान रहा हूं, इसलिए समस्या मुझे है, लेकिन मैं आपके उस पर्दे को हटा नहीं सकता हूं तो करूं क्या? तो आप हटा दीजिए, आप हटा सकते हो क्योंकि तुम कोटि सूर्य प्रभा, आपके प्रकाश के सामने ये अविद्या अंगुष्ठ मात्र परिमाण की जो अविद्या है वो कैसे बचा रहे? साक्षात प्रसन्नो भव, अभी तक आपकी कृपा अविद्या प्रति हुई है इसीलिए अविद्या जिंदी है और मैं दुखी हूं, अब अविद्या के प्रति होने वाली कृपा को मेरे प्रति करो तो मेरे प्रति कृपा होगी तो अविद्या के प्रति आपकी कठोरता हो जाएगी, कठोरता होते ही अविद्या खत्म हो जाएगा। तो साक्षात प्रसन्न हो बाबा, आप कृपा करो प्रसन्न हो ताकि तो अविद्या हट जावे और मुझे आपका साक्षात्कार दर्शन हो जावे। सूर्य ने तो किया आप क्यों नहीं करते हो? सूर्य रोज करता है तो आप क्यों नहीं करते हो? और क्या फिर देखेंगे, ये श्लोक बड़ा मार्मिक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।